الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آپ لوگوں کے ساتھ جو سفر سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا اب اپنی تکمیل کے قریب ہے. جس رب نے ہمیں آج کا دن دیکھنا نصیب کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے ہی نیکیاں اپنے تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں. ہم آج سورۃ الفلق انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور اس کے بعد صرف ایک سورۃ باقی رہ جائے گی جو انشاءاللہ ہم سنڈے کو کریں گے اور وہ پروگرام بھی آپ کے لیے لائیو انشاءاللہ تعالی براڈ کاسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات ہونے چاہیے اس وقت ہمارے دلوں میں, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم یہ کام اپنے جاری رکھیں اور کبھی بھی قرآن کا ساتھ ہم سے نہ چھوٹے. دیکھتے ہیں سورۃ الفلق. اس کا نام الفلق کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی الفلق کا لفظ ہے. اس سے پہلے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور جو چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اس کی ذات اور صفات ان سے پاک ہے ان کا بیان ہوا. اس سورۃ میں اور اس کے بعد کی سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی جو شر ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے اور اپنی پناہ میں لے کر ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتا ہے, ورنہ ہماری خود کی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. یہ سورت بعض نے کہا مکی ہے اور بعض نے اس کو مدنی قرار دیا. جو لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں وہ یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا, کیا میں تمہیں پتا نہ دوں کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں. اور پھر یہ آیات یہ سورتیں تلاوت فرمائیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس بنا پہ اس کو مدنی سورۃ قرار دیا گیا اور جو اس کو مکی سورۃ کہتے ہیں تو اس کے مضامین ایسے ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مکی سورتیں ہیں, کیونکہ جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کہ یوں لگتا تھا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. جو جو آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی قریش آپ کی مخالفت میں بھی شدید ہوتے چلے جا رہے تھے. جب تک تو ان کو یہ امید تھی کہ شاید کوئی سودے بازی ہو جائے یا بہلا پھسلا کہ آپ کو اس کام سے باز رکھا جائے, تب تک تو کچھ کمی رہی ان کی دشمنی میں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ کسی قسم کا کمپرومائز دین کے معاملے میں آپ نہیں کرنے والے, اور سورۃ الکافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں, और तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। इसके बाद तो कुफार की दुश्मनी अपने पूरे उरूज पे पहुंच गई, खास तौर पे वो खानदान जिनके मर्द या औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके दिलों में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर वक्त तो उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इनाद रहता था, और घर घर आपको कोसा जा रहा था, खुफिया मशवरे किए जा रहे थे, किसी वक्त रात को छुप के आपको कत्ल कर देने की साजिशें हो रही थी, आपके खिलाफ जादू टूने किए जा रहे थे ताकि या तो आप वफात पा जाएं या सख्त बीमार हो जाएं या दीवाने हो जाएं। नाउजु बिल्ला, शयातीन जिन और इंस हर तरफ फैल गए थे ताकि लोगों के दिलों में आपके खिलाफ और आपके लाए हुए दीन के खिलाफ वसवसे डालें, जिससे लोग बदगुमान होके इस दीन से दूर हो जाएं। बहुत से लोग हसद की आग में जल रहे थे क्योंकि वो अपने सिवा या अपने कबीले के सिवा किसी और को नहीं देखना चाहते थे कि उनको कोई मकाम मिले, और वो भी नबूवत का। ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई। अब क्या ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, ये हम इस चीज से देख सकते हैं कि हम इसको मक्की और मदनी दोनों ही कह सकते हैं, यानी ये सूरत मक्का में भी नाजिल हुई और मदीना में भी। और बाज औकात ऐसा होता था कि एक सूरत नाजिल हो चुकी होती थी मगर फिर कोई खास वाकया या कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती थी कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको दोबारा नाजिल किया जाता था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस तरफ कराई जाती थी। और यही मामला माउज़ातैन का भी है। माउज़ातैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास। इन दोनों सूरतों को माउज़ातैन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों सूरतें पनाह लेने वाली सूरतें हैं, यानी इनके जरिए अल्लाह ताला की पनाह ली जाती है। इस सूरत का नाम जहां सूरतुल फलक है वहां बुखारी में इसका नाम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक भी है और माउज़ातैन भी है। उकबा बिन आमिर की एक और रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें दो ऐसी सूरतें ना सिखा दूं जो उन बेहतरीन सूरतों में से हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जरूर। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउज़ातैन पढ़ाई। तैन क्या मतलब? दो। तो यानी ये दो सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा दी हजरत उकबा बिन आमिर को। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इन दो सूरतों को रात में पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इन सूरतों को, सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनको पढ़ते थे, अपने हाथों पे फूंकते थे और अपने जिस्म पे जहां तक हाथ जाता था वहां तक पढ़ के और फेर लेते थे, और 3 दफा ये अमल किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हुए तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर फूंका और आपके हाथ आपके जिस्म पे फेर दिए, बरकत की वजह से कि आपके हाथों में जो बरकत है उस वजह से। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त भी इनको पढ़ते थे और खास तौर पे बीमारी की हालत में इसी तरह पढ़ा करते थे। तो आप भी अपने बीमारों को ये ताकीद कर सकते कि माउज़ातैन पढ़ें, और जब सोने से पहले हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हर नमाज के बाद भी पढ़ा करते थे। एक और रिवायत में आता है उकबा बिन आमिर की ही है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर चले जा रहे थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पे हाथ रखे हुए साथ साथ चल रहा था। मैंने अर्ज किया, मुझे सूरह हूद या सूरह यूसुफ सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक बंदे के लिए सूरतुल फलक से ज्यादा नाफे कोई चीज नहीं। और दूसरी रिवायत नसाई की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया अब्दुल्ला बिन आबिस को कि इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि पनाह मांगने वाली चीजों ने जितनी चीजों के जरिए से अल्लाह की पनाह मांगी उनमें सबसे अफजल कौन सी चीजें हैं? उन्होंने अर्ज किया, जरूर या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये दो सूरतें उनको बताएं। बाज दफा लोग शिकायत करते हैं कि उनको कोई इस तरह के जादू या ऐसी चीजों का सामना है और वो पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें। इन रिवायात के बाद आप खुद सोचिए कि कोई और चीज हो सकती है जो ज्यादा बेहतर हो इन सूरतों से। और जब बताया जाता है कि ये सूरतें आप पढ़ें तो लोग इसको कोई बड़ी चीज नहीं समझते और सोचते कि ये तो आम सी बात हमें बता दी। हालांकि ये आप अगर ईमान के साथ पढ़ें तो इन सूरतों से बढ़ के कोई सूरत ऐसी है ही नहीं जो कि आपको हिफाजत में अल्लाह ताला की दे सकती हो। आप इवन जहर के काटने पे भी, या कोई बिच्छू ने काटा या कोई जहर का असर हो गया उसके ऊपर भी यही सूरतें पढ़ने की हमें ताकीद की गई है। तबरानी ने रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा नमाज की हालत में बिच्छू ने काट लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, बिच्छू पे खुदा की लानत, ये ना किसी नमाजी को छोड़ता है ना किसी और को। फिर पानी और नमक मंगवाया और जहां बिच्छू ने काटा था वहां आप नमकीन पानी मलते जाते थे। और इस तरह से ये सूरतें सूरतुल कैफिरून और सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ते जाते थे, यानी ये चारों कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े। इसके अलावा जो हमें रिवायत मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू की, के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के ऊपर जादू किया गया, उसके भी निकलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरतें तिलावत फरमाई थी। तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत को शुरू करते हैं और फिर हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि किस तरह हम इस वाक्य को देखेंगे कि किस तरह अगर जादू का असर हो तो उसके लिए इन सूरतों को पढ़ा जाए। इस सूरत का थीम क्या है? अल्लाह ताला की पनाह ले लेना। अमूमी तौर पे हर किस्म के शर से और खास तौर पे जो है वो रात के अंधेरे में जो भी शर है, जादूगरों का शर, हासिदों का शर, इन सब से अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाना। और आपने इसके फजाइल तो सुन ही लिए कि कितने ज्यादा फजाइल हैं, लिहाजा इन सूरतों को तो आप अपनी रोजाना की रूटीन में रखें, यानी आप सुबह शाम के जब अज़कार करते हैं उनमें भी ये सूरतें शामिल हैं, नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और इनकी ताकीद फरमाई, इसी तरह रात को सोने वक़्त भी और बीमारी के वक्त भी, तो यानी कितनी दफा इसकी ताकीद आई है। अब हमने कुरान करीम की जो शुरुआत की थी सूरतुल फातिहा से, एक दिन हमने शुरू किया था अपना सफर और वहां पर हमने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी थी सिराते मुस्तकीम की। सिराते मुस्तकीम पे चलना आसान नहीं क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हैं जो इस रास्ते में, और सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान के अपने अंदर भी है, जो कि उसका नफ्स है, और बाहर है जो शैतान है। तो अब देखेंगे आप सूरत नास में कि इससे पनाह मांगी गई, और इस सूरत में हर शर से ही पनाह मांगी गई, यानी सीधे रास्ते में जब इंसान चलना चाहेगा तो बहुत सारे दुश्मन होंगे जो उसको चलने नहीं देंगे। लिहाजा इंसान फिर रब्बुल फलक और रब्बुल नास और मलिक नास और इलाही नास से इल्तजा करता है कि हर मखलूक के और हर फितने के और हर किस्म के शर से महफूज रखने के लिए मुझे आप अपनी पनाह दे दें, मुझे अपनी पनाह में ले लें, और खास तौर पे शयातीन जिन्नो इंस से। तो इस तरह से सूरतुल फातिहा का लिंक एंड के साथ जोड़ता है, और सूरतुल इखलास जो इससे पिछली सूरत थी उसमें जब हमने अल्लाह ताला की बहुत तारीफ बयान फरमाई और उसके अंदर हमने अल्लाह ताला की पाकी बयान की, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है। तो उस सूरत में हमने जब ये सारी तारीफ कर दी, हम्द बयान कर दी, तो अब हम इन माउजतैन में अपनी कमियां, अपनी इम्परफेक्शन, अपनी वीकनेसेस बयान करते हैं कि हम अल्लाह किसी तरह भी बच नहीं सकते। बहुत सारे शर हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हर वक्त हर लम्हा जो हमें घेरे हुए हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें तेरी हिफाजत चाहिए या रब, कि तू हमें अपनी पनाह में ले ले, और जिस्मानी तौर पे भी हमें हिफाजत की जरूरत है, और हमारा जो ईमान है इसमें भी हमें हिफाजत की जरूरत है, और अल्लाह ताला का जो नाम हमने पिछली सूरत में पढ़ा अल्लाहुस्समद, और मैंने आपको बताया था ये नाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है, यूनिक नाम है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। इन सूरतों में हम उसी बात को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह हम तो बहुत मोहताज हैं, हत्ता कि अपने वजूद के अंदर भी हम इतने मोहताज हैं कि हम अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकते, चाहे हम कितने ही ताकतवर अपने आप को समझें, लेकिन फिर भी हमें तेरी पनाह की जरूरत है। तो इसमें हम समझ लें असमद की तफसीर आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अल्लाह ताला की पनाह ले लें। सूरह इखलास सारी तौहीद पे है, और तौहीद के रास्ते पे जो चलेगा उसको मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सताया भी जाएगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये काम शुरू किया तो सारी दुनिया मुखालिफ हो गई, तो जो इस रास्ते पे चलेगा उसको ये सहना पड़ेगा, ऐसे में बहुत सारे दुश्मन सर उठा लेंगे। तो जब तक इंसान को अल्लाह ताला अपनी पनाह में ना ले ले, अपनी प्रोटेक्शन ना दे दे, उस वक्त तक इंसान बच नहीं सकता। तो जब इंसान ये पढ़ ले और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए, फिर फिक्र ना करें, आपने सबसे बड़े की पनाह ले ली, फिर अपने मुखालफिन की परवाह ना करें। और बाज लोग ये समझते हैं कि ये दो सूरतें जो हैं सिर्फ नजरेबंद या जादू का इलाज है, ऐसा नहीं है, ये हर किस्म के शर से हिफाजत के लिए आपके लिए बहुत मुफीद हैं और हर किस्म के शर से बचाती हैं। तो इसलिए इन सूरतों को लाजिम पकड़ें। तो शुरू करते हैं हम ये सूरत जिसका नाम सूरतुल फलक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है ए नबी आप कह दे, वैसे तो सारा कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुंचा दें। लेकिन खास तौर पे जब ये कहा गया तो इससे पता चलता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की पनाह की जरूरत है तो फिर हम जैसे लोगों को तो कितनी ज्यादा जरूरत होगी कि आप भी ए नबी ये बात कह दें और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए। दूसरा, कुल से पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहता है इंसान अपनी कमजोरी का, आजजी का इजहार करे कि अल्लाह मैं नातवा हूं, अल्लाह ताला मुझे तेरी जरूरत है। ऐलान करे इस बात का, कुल कह के ये बता दिया गया, ऐलान कर दो। क्योंकि देखिए आगे पनाह मांगने की बात आई गई और याद रखिए वो ही इंसान पनाह मांगता है जो महसूस करता है कि वो अपने दुश्मन से या जिस चीज से भी वो डर रहा है उससे मुकाबला खुद नहीं कर सकता। जो भी उसका मुखालिफ है इसमें इतना जोर नहीं कि उसके मद्दे मुकाबिल आ सके। अब वो किसी की जरूरत समझता है कि कोई हो जो उसको बचा ले, जो उसको अपनी पनाह में ले ले। तो सबसे पहले जब इंसान ने कहा कुल आऊदू, तो आऊज का मतलब क्या है? मैं पनाह लेता हूं। और पनाह तभी ली जाती है जब किसी चीज से खौफ महसूस करके इंसान अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे की हिफाजत ले ले, किसी दूसरे की आड़ ले ले, किसी से लिपट जाए, चिमट जाए। ये होता है तावुस का मतलब। आपने खौफ महसूस किया, कोई खतरा महसूस किया, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब इस बचाने के लिए आप क्या करते हैं? किसी ऐसे की पनाह लेते हैं जो कि इसका मुकाबला कर सके। तो जाहिर है आपने फिर जब अल्लाह ताला की पनाह मांगी तो लाजिमन आप ये समझते हैं कि वो ही जात ऐसी है जो मुझे हर शर से बचा सकती, वो ही जात ऐसी है जो हर किस्म के नुकसान से बचा सकती है, वो ही जात ऐसी है जो चाहे जिन है, चाहे इंस है, चाहे कोई सांप बिच्छू है, चाहे कोई और चीज है, जो भी जिससे भी मुझे खतरा है, जिससे भी मुझे खौफ है, वो इंसानों में से हो, जानवरों में से हो, हशरात में से हो, जिन्नों में से हो, शयातीन में से कोई भी है, या मेरा वैसे ही कोई दुश्मन है, वही जात है जो मुझे उससे बचा सकती। तो जब आपने कुल आऊज कहा ना, तो आपने अपने आप को मान लिया कि मैं कमजोर हूं और अल्लाह ताला तू असमद है, तू सबसे ताकतवर, तू सबसे बड़ा, तू सबसे अजीम, तेरी कुव्वत के आगे कोई ठहर नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, अपनी पनाह में ले ले। तो कितनी बड़ी बात इंसान कहता है जब वो कहता है कुल आऊज़ु बी रब्बिल फलक या बी रब्बिन नास या आऊज़ु बिल्ला। तो इंसान बहुत बड़े की पनाह ले रहा है, छोटी बात नहीं है ये, क्योंकि हर एक चीज के शर से सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है। तो इसमें आपने अपनी आजजी भी बयान कर दी, आपने अल्लाह ताला को बड़ा भी बता दिया। इसीलिए इब्नुल कय्यिम फरमाते हैं कि दो सूरतें ऐसी हैं जिनकी जरूरत इंसान को खाने पीने से भी ज्यादा है, खाने पीने से भी ज्यादा। और वो कौन सी है? वो ये वाली सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो अब आप सोचें, खाना पीना भी इंसान दिन में 2-3 दफा खाता होगा, लेकिन ये सूरतें कम अज कम 14 दफा तो इंसान पढ़ता है ना, इतनी दफा तो खाना नहीं खाता कैसे, जैसे हर फर्ज नमाज के बाद एक एक दफा आपने पढ़ी, सुबह शाम के अजकार में 3 3 दफा पढ़ी, 6 दफा हो गई, और फिर सोते वक्त भी 3 दफा पढ़ी, तो ये कितनी दफा आपने इन सूरतों को पढ़ा। इसी तरह आप किसी नई जगह जाएं, किसी नई जगह ठहरें, किसी किसी ऐसी मजलिस में जाने वाले हैं जहां आपको कोई खतरा लगता है, या कहीं स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, तो ये सूरतें पढ़ें। आदा युईजू से आऊजू, कि आप चिमट जाएं, या लिपट जाएं, किस चीज के खौफ से, जो आपको डराने वाली है, जो आंखों से देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती, हर किस्म की ऐसी चीज से हिफाजत। तो इससे इंसान अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। और जब आप अल्लाह ताला की पनाह ले लें, तो फिर तो कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। इसी वजह से पनाह लेना, सिर्फ जब आप गैब में पनाह मांगते हैं कि मैं किसी गैबी हस्ती से पनाह मांग रहा हूं, तो वो सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं हो सकता। एक तो है ना कि आप मसलन पैसे पनाह ले लेते हैं, मसलन के कहीं गोलियां चल रही हैं, तो आपने दीवार के पीछे आड़ में पनाह ले ली, या कोई आ रहा था तो आप जल्दी से अपने घर में चले गए और पनाह ले ली, या आपने कोई खंदक है उसके अंदर पनाह ले ली, या आप असाइलम ले लेते हैं किसी हुकूमत के पास जाके आप पनाह ले लेते हैं कि मुझे असाइलम दे दें किसी से, वो अलग बात है। लेकिन एक और भी किस्म होती है ना पनाह लेने की, जिसमें हर तरह के खतरे से, ये तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो मादी चीजें हैं, यानी आलमे असबाब के अंदर किसी मादी चीज से ऐसे पनाह ली जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक है वो पनाह लेना हर खतरे से, हर तरह के मादी अखलाकी रूहानी नुकसानदेह चीजों से, किसी सुपर नेचुरल माफ़ोकुल फितरत किसी हस्ती से पनाह लेना, वो सिर्फ अल्लाह ताला की हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। क्या हम किसी और के लिए करें कहें या आली मदद या फलां मदद, तो वो जायज नहीं, क्योंकि पनाह लेने में मैंने आपको बताया कि आपने मान लिया कि वो हस्ती इस कदर ताकतवर है कि हर किस्म के शर से मुझे बचा सकती है, और वो सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती हो सकती है। आप देख लें जितनी दुआएं हैं उनमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही पनाह मांगी गई है, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं मांगी गई। जहां पे भी आउज का लफ्ज आया, पनाह लेने का लफ्ज आया, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नेमते, या अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफाउ, या अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अल बरसी वल जुनूनी वल जज़ाम, या अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन फितनतिन व अज़ाबिन नार, तो इस तरह आप देख लें मिन अज़ाबिल क़ब्र भी। तो ये सारी आप देख लें अल्लाह ताला ही की पनाह मांगी गई है, लिहाजा हमें अल्लाह के सिवा किसी और की पनाह लेना जायज नहीं है। तो कुल आऊदू, कह दीजिए मैं पनाह लेता हूं, बे रब, रब का माना मैं आपको बता चुकी हूं, आउजु बिल्ला भी हो सकता था, लेकिन यहां पे रब क्यों आया, क्योंकि तमाम शुरूर से हिफाजत की बात आ रही है। तो अल्लाह ताला को उसके इस नाम से और रब से पुकारा गया, क्योंकि रब में माना है ना कि वो केयर टेकर है, वो हमारा मुरब्बी है, वो हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारी केयर करने वाला, हमें पालने वाला, परवरिश करने वाला मोहब्बत के साथ। तो ए अल्लाह, यानी तू तो हमारा पालने वाला है, तू तो हमारी केयर करने वाला है, तो अब मैं किसी चीज से अगर डरूं तो मैं तेरी पनाह लूंगा, क्योंकि तू ही है मेरा पालने वाला। इसी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला को उसके उस नाम से पुकारे जिस किस्म की आपकी हाजत है। जैसे आपको अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो अल्लाह ताला के नाम गफूर और रहीम की बात कर सकते हैं। आपको रिस्क चाहिए तो या रज़ाक कह सकते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर आपको हिफाजत चाहिए तो हिफाजत करने वाला रब ही है ना, जो आपका मुरब्बी है, जो आपका पालने वाला है, तो अपने केयर टेकर को ही कहेंगे कि मेरी हिफाजत कर। और रब से हमारा अल्लाह ताला से जो रिश्ता है वो पता चलता है। जब आपने उसको रब कह दिया ना, तो आपने मान लिया कि आप बंदे हैं, गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी आदमी को कहते हैं ये मेरे वालिद हैं, तो इसका मतलब आपने क्या मान लिया कि मैं इनकी औलाद हूं, कहे बगैर ही पता चल गया। कोई औरत कहती है ये मेरा शौहर है, तो उसको ये आप कहने की जरूरत नहीं कि मैं इसकी बीवी हूं, अब पता चल गया कि ये जब ये शौहर है तो ये बीवी है इसकी। कोई कहता है कि ये मेरे टीचर है, तो उस पता चल गया कि आप स्टूडेंट हैं उनके। इसी तरह जब आपने अल्लाह ताला को कह दिया कि ये मेरा रब है, तो खुद ब खुद आपने ये मान लिया कि मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका गुलाम हूं। तो अब आप अपने आप को इस पोजीशन में देखें कि गुलाम कैसा होता है, बंदा कैसा होता है। वो तो अपने मालिक का मोहताज ही रहता है। और आउज ये मुजारे है, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों इसमें आते हैं। तो आज भी मैं पनाह मांगता हूं, कल भी और इसके बाद आने वाले वक्त में भी हमेशा मुझे ऐ अल्लाह तेरी पनाह की जरूरत होगी। मैं कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं ऑन माय ओन में इतना हो जाऊं, इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपने आप को की अब खुद हिफाजत कर सकता हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह मुझे हमेशा ही तेरी हिफाजत की जरूरत रहेगी, हमेशा ही तेरी पनाह में आने की जरूरत रहेगी। कितनी खूबसूरत बात है जब आप शुरू इससे करते हैं और सोचे तो सही कि कैसा एहसास होता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर फलक का माना देखते हैं। फलक के असल माने तो फाड़ने के हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फलकुल इस्बाह फरमाया, फालिकुल इस्बाह फरमाया कि अल्लाह ताला फाड़ने वाला है सुबह को, यानी रात की तारीकी को फाड़ के वो सुबह को निकालता है, वो रब है। तो वो रब है फलक का, एक ये माना हो गया। दूसरा माना फलक का क्या है? दूसरा माना फलक का खलक किया गया। खलक यानी दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा होती हैं वो जाहिर है किसी ना किसी चीज को फाड़ के ही निकलती है, कुछ स्प्लिट ओपन होता है तो फिर निकलती। तमाम नबातात को देखें, बीज फटता है, फिर जमीन फटती है, फिर कोंपल निकलती। तमाम हैवानात या तो माँ के पेट से फटके निकलते हैं, माँ का पेट ही से फटता है और फिर निकलता है बच्चा, या अंडा टूटता है, क्रैक होता है तो फिर निकलता है। या किसी और चीज को भी देखें तो चश्मे हैं, वो जमीन के अंदर से निकलते हैं तो जमीन का सीना चाक होता है तो फिर निकलते हैं, या पहाड़ों से फट के निकलते हैं। अब दिन भी निकलता है तो रात का पर्दा चाक करके फिर दिन निकलता है। बारिश उतरती है तो बादलों को चीर के फिर जमीन पे आती है। और इसी तरह बिग बैंग थ्योरी अगर आप देख लें तो उसमें भी यह है कि जमीन आसमान सब एक ही थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको फाड़ के अलग किया। तो इस माने के लिहाज से फिर फलक का लफ्ज जो है ना वो तमाम मखलूकात के लिए आ गया। अब अगर पहला माना ले तो आयत का मतलब क्या बनता है? मैं सुबह के तुलू करने वाले के पनाह में आता हूं, पनाह लेता। अच्छा, यहां पे आप नोट करें, ये नहीं कहा गया कि इस्ताईजु बिल्ला, इस्ताईजु बिर्रब, यहां पे कहा गया आउज, मैं मांगता हूं, चाहता हूं, तलब करता हूं, ये नहीं कहा गया, बल्कि अपने आप को गिरा दिया गया, मैंने ले ली पनाह। देखिए ना, फर्क है ना दोनों में। जैसे आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, मैंने इस्तेफार तलब की, तो आउस का मतलब ये नहीं है कि मैंने तलब करता हूं, बल्कि मतलब कि मैं पनाह लेता हूं। ठीक है, तो आपने ले ली पनाह, यानी आपने अपने आप को गिरा दिया, यानी एक्शन बता रहा है ये चीज कि मैं अभी मांग नहीं रहा, अल्लाह मैंने दे दिया, मैंने खुद को गिरा दिया, सबमिट कर दिया, मैं आ गया हूं, बस अब तू नहीं मुझे बचाना, सब कुछ को छोड़ दिया, किसी और की पनाह नहीं ली, अल्लाह तेरी ही पनाह ली है। क्यों? इसलिए कि तू है जो सुबह को तुलू करने वाला है, अंधेरे का पर्दा चाक करके। और दूसरा मतलब ले तो यानी खल्क का रब तू ही है। फलक को क्या माना लेंगे? खल्क, खल्क का रब तू ही है, यानी जितनी मखलूक है सब का रब तू है। अल्लाह अकबर। और जब इंसान ये सोचता है ना, पहला माना अगर देखें तो, कि सुबह को तुलू करने वाला, तू सुबह को तुलू करने पे कादिर है, तो मेरी रात के अंधेरों से भी सुबह को तुलू करने पे कादिर है, दिन को निकालने पे कादिर है, मेरे ऊपर जितनी आफतें हैं वो अंधेरे हैं, मेरी जितनी परेशानियां हैं, मेरे जितने गम हैं वो अंधेरे हैं, उन अंधेरों में से मेरे लिए भी सुबह करने वाला तू ही है। तो सोचें कि फिर इस उम्मीद के साथ, क्योंकि जो सुबह का लफ्ज है ना, उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, इसी वजह से हम कहते हैं ना एक नई सुबह का आगाज करते। तो सुबह क्या है? उसमें उम्मीद है, उसमें रोशनी है, उसमें पॉजिटिविटी है, वो जिंदगी की अलामत है। तो आपने जब रब्बुल फलक कहा, तो फिर अब आप ये जहन में रखें कि वो रब है जो अंधेरे दूर करके इस कायनात में रोशनी को लेकर आता है, तो वो मेरी जिंदगी में भी रोशनियां ला सकता है और अंधेरे दूर कर सकता है। और जब हम कहें कि अल्लाह ताला खल्क का रब है, तो जितनी मखलूक है सारी मखलूक के मालिक की पनाह में लेती, तो वही फिर बचा सकता है ना मखलूक के शर से भी, वही बचाएगा मखलूक में जो कोई भी है, जिसका भी कोई शर है। याद रखें, कई चीजें तो ऐसी हैं जिनका शर हमें पता होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें शर सामने नजर नहीं आ रहा होता, उनमें छुपा होता है, हम कभी जान ही नहीं सकते कि ये चीज इतनी शर वाली भी हो सकती थी। लेकिन उसका मसला है कि बारिश का बरसना ही वैसे तो रहमत है, लेकिन उसी के अंदर फिर शर भी पैदा हो जाए, हम नहीं जानते। जब उसी के जरिए फिर सैलाब आ जाते, तूफान आ जाते, तो देखने में कोई चीज मुफीद भी लगे तो हम नहीं जानते उसमें कितने शरूर छुपे हैं, उनसे भी हमें अल्लाह ताला बचा ले। और जिन चीजों को हम शर की निगाह से देखते ही हैं उनसे भी बचा लेना, मसलन बीमारियां, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, चाहे दुनिया की या आखरत की। इसीलिए आगे क्या है, मिन शर्री मा खलक, ए अल्लाह जो भी तूने पैदा किया उसके शर से, जो भी पैदा किया, इसमें हर शर आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, उन चीजों का भी जिनको हम सामने देखते हैं, और उनका भी जिनको हम नहीं देख सकते। अजाब कब्र है, हम इस वक्त नहीं देख सकते, गैब है वो, عذاب النار، فتنة المحيا والممات، ये सब ऐसे शुरू या कई बीमारियां छुपी हुई होती तो हम नहीं जानते, हमारी औलाद में कोई शर हो हम नहीं जानते, हमारे किसी और रिश्ते में हमारे लिए कोई शर पैदा हो जाए हम नहीं जानते। तो हर किस्म के शर से जब आपने पनाह ले ली तो फिर आप सेफ हो गए। हमने कह दिया कि अल्लाह जो कुछ दुनिया में तूने पैदा किया है उसके जो शर का पहलू है ना उससे मुझे अपनी पनाह मिले, क्योंकि चीजों में खैर भी होती है एट द सेम टाइम और शर भी होता है। बस चीजें टोटली कोई भी शर की नहीं होती, उसमें कोई खैर भी होती, लेकिन उसके शर के पहलू से मुझे अपनी पनाह मिले ना। तो इस तरह से हमने हर चीज के, जो भी चीजें हैं उनके शर से, तमाम मखलूकात के शर से, जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया उसके शर से हमने अल्लाह ताला की पनाह मांग ली। अब इससे कुछ चीजें आप और देखें कि जो इसमें आपको समझ आएंगी इस आयत में, वो ये कि देखें शर को पैदा करने वाला भी तो अल्लाह ताला ही है, क्योंकि हर चीज अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन यहां पे ये नहीं कहा गया कि मैं उन तमाम शर से पनाह मांगता हूं जो अल्लाह ने पैदा किया, खलक अल्लाह नहीं, ये नहीं कहा गया। क्यों? इसलिए कि ये भी अदब है, हर अच्छा काम जो है उसकी निस्बत तो जरूर अल्लाह ताला की तरफ करें, लेकिन जो कोई शर की चीजें हैं उनकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ ना की जाए, या अल्लाह ताला ये शर पैदा करने वाला है, नहीं, बल्कि उनके ये कहा मा खलक, और शर उलट किसका है? खैर का। तो शर में हर वो तकलीफ दे चीज आ गई जो भी इस दुनिया में है, जो भी अल्लाह ताला ने पैदा की। और जब आप इसकी फहरिस्त बनाने लगते हैं ना कि क्या क्या शर है, तो आप हैरान होंगे कि इतने से एक लफ्ज में माँ खला का कह के सारी चीजों के शर से आपने अल्लाह ताला की पनाह ले ली, चाहे वो सांप बिच्छू का है, दरिंदों का है, जलजले सैलाब तूफानों का है, कैंसर और कोविड का है, या और किस किसी किस्म की भी चीज का, चाहे वो अंदर की जो रूहानी बीमारियां हैं उनका शर है, तकब्बुर, हसद, बुगज, कीना, लालच, हुब्बे दुनिया, चाहे वो गुनाह है वो भी तो शर है। तो हर किस्म के शर से ही आपने पनाह ले ली, कितना बड़ा कलिमा है ये, और जिसने पैदा किया वो ही बचा सकता है। हम किसी और की तरफ नहीं लौट रहे, तेरी तरफ ही आते हैं, और अगर कोई किसी और की तरफ जाता है इन चीजों से बचने के लिए, किसी और से पनाह तलब करता है कि फलां मदद कर ले और उसका नारा बुलंद करता है, तो पिछली सूरत में आपने जो अल्लाह समद कहा था उसको तो आपने निगेट कर दिया। आप देखते हैं कि बाज दफा हिफाजत के लिए बच्चे को ऐसे धागे पहनाए जाते हैं जिनमें बीड्स लगे होते हैं कि ये हिफाजत करेगा, इमाम जामिन है ये हिफाजत करेगा। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जब इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल सूरत अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत के लिए दे दी तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं। और माँ में हर चीज आ गई, हर चीज माँ एक लफ्ज कह के जो भी अल्लाह ताला ने पैदा की। फिर आप ये देखें, ये कह दिया गया माँ खला का, लेकिन उसके बाद खास खास किस्म की मखलूकात के शर से अलग अलग अल्लाह ताला की पनाह मांगने का ना भी जिक्र किया जाता तो भी ये सिर्फ एक आयत काफी थी, क्योंकि क्योंकि इसमें सारी मखलूकात के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांग ली गई। लेकिन इसके बावजूद आगे चंद मखसूस चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांगने का जिक्र है, जिसमें ये खुद ब खुद माना आ जाता है कि वैसे तो अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की है उनके शर से मैं अल्लाह की पनाह ले लेता हूँ, लेकिन खास तौर पे इन चीजों का जिनका जिक्र आगे आ रहा है इस सूरत में भी और सूरत नास में भी, ऐसी हैं ये चीजें जिन में जिनके मामले में अल्लाह ताला की पनाह कि मैं बहुत ज्यादा मोहताज हूं, यानी बहुत ज्यादा, ये अपने आप को इंसान बचा ही नहीं सकता जब तक अल्लाह की पनाह में ना आ जाए। और अगर इससे बढ़ के कोई भी इस्तियाजे के लिए चीज होती तो कोई और बताई जाती, मगर इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकती। इस सूरत से, इन इन आयात से, ये खालिक से ही पनाह मांग ली, जिसने पैदा किया वो इनको कंट्रोल करेगा। तो आपने एक हाकिम आला की पनाह ले ली जिसके मुकाबले में किसी मखलूक की कोई ताकत नहीं। इसीलिए जब आप पढ़ लेना ये, तो इस माने को जहन में बिठा के पढ़ा करें। उसके बाद भी अगर इंसान डरता ही रहे और कहे नहीं आप मुझे कुछ और बताओ, कुछ और होना चाहिए, इनसे ये तो मेरे लिए काफी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, आपने बहुत बड़ी कलिमात कह दी है। और शर का जो लफ्ज है ना, नुकसान के लिए भी आता है, तकलीफ के लिए भी आता है, जरर के लिए भी आता है, गम के लिए भी आता है, और उन असबाब के लिए भी जो इस नुकसान का या तकलीफ का या गम का की वजह बनते हैं, उनसे भी आपने पनाह मांग ली। जैसे आप देखने कुफर शिर्क वगैरह या जुल्म या गुनाह जो हैं, देखने में तो उनकी कोई ऐसा नजर नहीं आता कि इसमें कोई नुकसान है, लेकिन इनका कितना बड़ा नुकसान है। फिर वक्त आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, गुनाह करने में तो मजा आ रहा है, लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान है। तो इसके भी शर से अल्लाह ताला की पनाह ले ली। और इसमें ये भी माना है कि आपने जो शर वाके हो चुका है उससे भी आप अल्लाह की पनाह ले रहे हैं, और जो अभी वाके नहीं हुआ, फ्यूचर में कुछ होना है, तो मैंने आपको बताया आउजू में आप फ्यूचर का भी माना है, आप दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जो फ्यूचर में है ना उससे भी मुझे अपनी पनाह में ले ले। अब देखते हैं किन चीजों से खास तौर पे बताया गया कि अल्लाह ताला की पनाह में आना जरूरी है। तो पहली चीज, वह मिन शर्री गासिक इदा वकब, गासिक के शर से इदा वकब, जब वकब हो। अब देखें यहां पे एक तो शर का लफ्ज रिपीट हुआ, इसका मतलब है कि आगे जितना भी शर के लफ्ज रिपीट हो रहे हैं तो इन चीजों का शर अलग अलग है, यानी जो शर अंधेरे का होगा वो डिफरेंट है जादूगर के शर से, जो जादूगर का होगा वो डिफरेंट है हासिद के शर से। तो पहला है गासिक, गासिक का लफ्ज जो है गसा से, और ये तारीकी के लिए आता है, अंधेरे के लिए आता है, और वकब मतलब दाखिल होना या छा जाना, यानी रात की तारीकी के जब वो छा जाए। क्यों? उसमें जो शर है उससे, वैसे हर रात की तारीकी में कोई ये नहीं कि जरूरी कि शर हो, लेकिन जिस रात की तारीकी में भी शर है, मसल लैलतुल कदर में कोई शर नहीं, लेकिन जब जब भी शर है, जो शर वह सिर्फ रात से नहीं पनाह मांगी गई, उसके शर से, क्योंकि रात में अक्सर शर होता है। जितने जराइम आप देख लें रात के वक्त, चोरियां, डाके, अगवा, कत्ल, फिर शराबो शबाब की जो महफिलें होती हैं, जो नाइट लाइफ कहते हैं या नाइट क्लब्स कहते हैं, ये सब रात की चीजें हैं ना, नाच गाने और ये जिनाकारी, ये सब रात की है। डे क्लब्स कोई नहीं कहता। तो गुनाह के काम अक्सर रातों को ही सर अंजाम दिए जाते हैं। अस्पतालों में भी आप देखें, एमरजेंसी रूम जो है वो रातों को भर जाते हैं, और जितने वलीज प्रोग्राम होते हैं, गंदे प्रोग्राम होते हैं, उन सबको भी रात को एक्सरेटेड प्रोग्राम्स को नशर किया जाता है। फिर इसी तरह जितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वगैरह, ये भी रातों को निकलते हैं। फिर कई मुल्क दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, तो आपने वो भी देखा है ना, रात को हमला करते हैं, उनके जहाज रात में जाते हैं, रात ही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी साजिश जो कुरैश ने की थी, वो रात के वक्त ही की थी। और रात में इस तरह की चीजें सब निकल आती हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज गरूब हो जाए तो शयातीन हर तरफ फैल जाते हैं, लिहाजा अपने बच्चों को घरों में समेट लो और अपने जानवरों को बांध रखो जब तक रात की तारीकी खत्म ना हो जाए। यानी जिस वक्त बिल्कुल सूरज गरूब हो रहा होता है और उसके बाद जो मगरिब का वक्त होता है, उसमें बच्चों को घरों के अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि एकदम शैतान फैलते हैं उस वक्त। उनको समझ लें कि जैसे एक खुल जाते हैं, यानी अपने निकल के हर तरफ फैले होते हैं। तो इस वक्त में जितना भी शर है, उस सब शर से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम अल्लाह ताला तेरी पनाह ले लेते हैं। और इसीलिए हम बच्चों को भी कहते हैं कि रात को देर तक बाहर ना रहें। इसीलिए हमें अपने कोई भी प्रोग्राम्स कोशिश करने चाहिए कि लेट नाइट तक ना रहे। अब हमने अपनी जिंदगी ऐसी कर दी है कि हर चीज लेट नाइट हो रही है, इवन शादियां रात 12-1 बजे तक चलती रहती हैं। तो ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि अंधेरे में शर भी होता है। इसी तरह एक रिवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा और बाहर निकले और चांद की तरफ इशारा किया। रात को चांद निकला हुआ था, आपने इशारा किया, फरमाया अल्लाह की पनाह मांगो, ये अलगासिक है जो इदा वकब, ये गासिक है, यानी चांद को कहा ये गासिक है। क्यों? इसलिए कि चांद निकलने का वक्त भी चूंकि रात को ही होता है, दिन को अगर चांद हो भी तो आसमान पर नजर नहीं आता। तो मतलब क्या है कि रात से अल्लाह ताला की पनाह मांगो जो रात में शर है। अगला, वा मिन शर्री, और शर से, अन्नफासात, नफासात के, फिल उकद, जब वो गिरोह में, यानी नफासात जो फूंके मारने वाली हैं, उनके शर से जो गिरोह में फूंके मारती हैं। यानी अब देखें, शर पहले ब्रॉड सेंस में शर की बात की गई, मा खला, फिर रात की, फिर नैरो डाउन करके अब क्या है, नफासात के, शर की। नफासात, नफासा कहते हैं फूंक मारने को, मगर वो फूंक जिसमें थोड़ा सा थूक भी होता है, ठीक है ना? आप थू थू एक ऐसी थूक होती है, एक बिल्कुल खुश फूंक होती है। तो उर्दू में मेरे ख्याल इसका कोई लफ्ज नहीं है, थुतकारना शायद होगा, लेकिन फूंक मारना जो होता है उसमें सिर्फ हवा होती है, नफासात में थोड़ा सा थूक भी होता है, और गिरा को कहते हैं। तो अकदे निकाह कहते हैं, निकाह की गिरा। तो उससे आप ये लफ्ज याद रखें। यहां पे सेहर नहीं कहा गया, जादू नहीं कहा गया, नफासात कहा गया, जो जादू करते हैं फूंके मार मार के। क्यों? इसलिए कि जादू से नहीं, जादूगर से, जो फूंके मारने वालियां हैं उनके शर से, इसलिए कि उनके अंदर शर ही शर है। ये इतने ज्यादा शरीर हैं कि इनसे ही बचा जाए, ये शर वाले लोग हैं, इनसे भी बचने की जरूरत है। अब जादूगर से बचेंगे तो जाहिर है जादू से भी बचेंगे, और जादू भी कई किस्म का होता है, लेकिन इनमें जो सबसे सख्त वाला जादू होता है वो है जो गिरोह में फूंके मार मार के किया जाता है। जब किसी जिसके ऊपर जादू करना होता है इसके बाल या नाखून ले लिए जाते और उनपे फिर कलिमात शिरकिया कुफरिया ऐसे कह कह के फूंके मारी जाती और फिर उन चीजों को कहीं दबा दिया जाता है। इस तरह से जादूगर अपने जादू को दूसरे के ऊपर करता है और ये जादू अक्सर ही रात को ये भी किए जाते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू जो है इसको कबीरा गुनाहों में करार दिया है और सबा मुबिकात यानी जो सात ऐसे गुनाह जो हलाक कर देने वाले हैं उनमें जादू को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल किया है कि जादू किसी के ऊपर भी करना ये हराम है, बल्कि इसको कुफर कहा गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कफर सुलेमानु वलाकिन शयातीन कफरू। सुलेमान अलैहि सलाम ने कुफर नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफर किया, वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो यानी जादू कुफर तक पहुंचाने वाली चीज है और जादू करके इंसान अपनी आखरत तबाह कर लेता है। और यहां पर नफाथात अगर इसको हम जमा मोनस लें तो यानी वो जो फूंके मारने वालियां हैं, तो फूंके मारने वालियां कौन, यानी ये जो खास तौर पे अरब में औरतें ये काम किया करती थी और जादू टूने के अंदर बहुत ज्यादा उनका यानी उनका हाथ होता था जादू करने में। अब यहाँ पे आपके सामने मैं रखती हूँ जो बुखारी की रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करने के बारे में, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे यानी जादू का असर ये हुआ कि आप अज़वाजे मुतहरात के पास आए हैं हालांकि नहीं आए होते थे, यानी बस इतना सा ही असर हुआ। मुसनद अहमद की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया जिसे कई दिन तक आप पर असर रहा। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि फलां यहूदी ने आप पे जादू किया और फलां फलां कुएं के अंदर वो जादू रखा हुआ। और हजरत सुफियान फरमाते हैं कि यही सबसे बड़ा जादू का असर है। जब ये हालत आपकी हो गई कि आपको ये यानी याद नहीं रहता था कि आप बीवियों के पास नहीं गए होते थे और आपको लगता था गए हैं, तो एक दिन आप फरमाने लगे, आयशा मैंने अपने रब से पूछा और मेरे परवरदिगार ने मुझे बता दिया, दो शख्स आए, एक मेरे सरहाने पाइंती की तरफ और एक सरहाने की तरफ बैठ गया। एक ने दूसरे से पूछा इनका क्या हाल है, दूसरे ने कहा इन पे जादू किया गया। पूछा किसने जादू किया, कहा लबीद बिन आसिम ने जो बनू जुरैक के कबीले का है, जो यहूद का हलीफ है और मुनाफिक शख्स है। कहा किस चीज में, कहा तर खजूर के दरख्त की छाल में, पत्थर की चट्टान तले, जरवान के कुएं में। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये दिखा दिया गया था। असल में यहूदी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया कर ली उसके बाद अब यहूद को ये तश्वीश हुई कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से तो फारे हो गए तो अब हमारी खैर नहीं है, अब ये हमारी तरफ ही आएंगे। तो उन्होंने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और बहुत सारी साजिशें की, इनको तो जिला वतन भी कर दिया गया था इन्हीं साजिशों की वजह से, तो इन्होंने कहा कि अब ये हमारे लिए थ्रेट होंगे। इस पर यहूद बनू जुरैक के पास गए, वो भी इनके हलीफ थे, वहां पे एक जादूगर था लबीद बिन आसिम, उसको जाके कहा कि तुम कुछ ऐसा करो कि इनको नाउज़ु बिल्लाह हलाक कर दो, हमने तो अपना पूरा जोर लगा लिया, तुम सबसे बड़े माहिर जादूगर हो। तो लबीद की बेटियां भी जादू में माहिर थी, उसने एक छोटे लड़के को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, यहूदी लड़का था, तो उसको कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल ला के दो। और वो लड़का जो था वो बाल लेकर आया, आपकी कंघी के चंद दंदाने भी मंगवा लिए उसने कि चंद बाल और कंघी के दंदाने, और वो ला के दिए और इसने उन पे जादू किया। और फिर उसके बाद एक कुआं था जो बनू जुरैक का था, और उसमें इस जादू को डाला मैंने उसको, फिर जब जो बाल थे ना उनमें गिरे लगा लगा के उन पे जादू का अमल करके फिर कुएं में डाल दिया उस चीज को, और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए। अब इस जादू ने जब अपना अमल शुरू किया तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल होने लगी, और तब आपको ये फील होता था कि मैं गया हूं अपनी बीवियों के पास लेकिन नहीं गए होते थे, यानी बीवियों से भी दूर करती है। बाज कहते हैं इसका असर 3 दिन तक रहा, बाज जगह पे आता है 6 महीने तक रहा। लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि इसका कोई असर वही पे नहीं हुआ, वही की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद फरमाई है। बाज लोग इस हदीस का ही इनकार कर देते हैं कि ये हदीस ही सही नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे जादू हो सकता था, वरना तो फिर वही मशकूक हो जाएगी कि कोई कह सकता है कि वही पे मे भी आपको कोई शक हो गया, भूल गए। ये ऐसा नहीं है, वही की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद फरमाई है। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं की तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया ख्वाब में, जब आप सोए हुए थे ये दो फरिश्ते आए, एक जिब्राईल अलैहि सलाम थे एक और फरिश्ता था, और उन्होंने ये सारी बातचीत की, और फिर फरिश्ते ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी, यानी आप बता भी दिया कि कहाँ पे ये जादू है, और फिर ये भी कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी। अब अगर किसी को, वैसे तो हम लोग में ऐसी ये एक आम सी बात है कि कोई भी काम ना हो रहा हो, किसी की बच्ची की शादी ना हो रही हो, कोई बीमार हो गया हो, किसी को कारोबार में नुकसान हो जाए, फौरन सोच लेते हैं कि बस जादू हो गया। तो सब चीज जादू नहीं होती, याद रखिए, हर चीज जादू से मुतल्लिक नहीं होती। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं वो बिल्कुल ही निगेट कर देते कि जादू कोई चीज ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। जादू बरहक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर चीज कोई जादू से ही नहीं दुनिया में चल रही। अब हमारी अप्रोच क्या होती है, अगर किसी को वाकई ये शक पड़ जाए, जाहिर है डेफिनेट तो कोई नहीं कह सकता, शक पड़ जाए तो वो क्या करते हैं, अब उसके बाद वो चल देते हैं किसी और जादूगर के पास के उससे जाके मैं इस जादू का तोड़ करवाऊं। हालांकि ये भी हराम है कि इंसान जादू करवाने के लिए चला जाए किसी के पास। अव्वल तो आपको कभी भी श्योर नहीं है कि जादू है, अगर श्योर हो भी जाए तब भी जो अल्लाह ताला ने इसका तोड़ बताया उसी तरह करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गए उस कुएं के पास जो ख्वाब में आपको बताया गया था, और उसके करीब जो दरख्त भी थे वो भी शयातीन के सरों की तरह लगते थे। साहबा से आपने फरमाया कि जाओ और जाके पत्थर के नीचे से वो लेकर आओ। वो लेकर आए तो उन बालों के ऊपर 11 गिरे लगी थी, और आप देखें ये माउज़ातैन की भी 11 ही आयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गिरे खोलते जाते थे और एक एक आयत पढ़ते जाते थे, और जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल रहे थे आपकी तकलीफ दूर होती जा रही थी, और जब सारी गिरे खोल दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हशाश बशाश हो गए और अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी। तो इससे पता चलता है कि इन सूरतों की वजह से जादू का असर खत्म होता है, लेकिन ये तरीका भी बता दिया गया कि इस तरह उस चीज को, अगर किसी चीज पे, बालों पे या नाखूनों पे या ऐसी चीज पे किसी पे जादू किया गया तो फिर इस तरह से करके उस जादू को के असर को जाहिल करना होता है। और आप देखें कि इसी वजह से हमें बताया जाता है कि हम अपने बाल वगैरह या नाखून वगैरह किसी ऐसी जगह पे फेंकें जहां पे किसी को उनको हासिल करना आसान ना हो, डिस्पोज ऑफ ऐसे करें उनको, इसीलिए हमें दबाने का कहा गया कि आप दबा दें। तो भी वजह यही है कि कोई इनको हासिल करके उनके ऊपर कोई जादू ना करे। बाज जादूगर किसी की कमीज वगैरह मंगवा लेते हैं कि उसकी कमीज लेकर आओ, उसकी तस्वीर लेकर आओ, और फिर उसके ऊपर जादू करते हैं। तो जादू की भी कई किस्में हैं, एक तरह से नहीं होता, बहुत तरह से जादू होता है। तो इसलिए जरूरी नहीं अगर बालों के ऊपर नहीं हुआ तो फिर जादू कैसे हो गया, ऐसे नहीं है, किसी और तरह से भी जादू किया जा सकता था। तो लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत ही सख्त किस्म का जादू है जो इस तरह से किसी की चीज पे किया जाए। तो एक तो ये हमें समझ आई कि ये जमा मोनस है तो औरतों की तरफ इशारा है। दूसरी राय ये है कि नफा साथ इसम जिन्स है और जमा है जिसमें मर्द औरतें सब शामिल हो गए, यानी मर्द भी हो सकते हैं औरतें भी हो सकती हैं। कोई भी जो जादू कर रहा हो, और आज के दौर के अंदर अक्सर मर्द कर रहे होते हैं जादू, तो उसके अंदर ये सारे ही आ गए, यानी जो बहुत फूंकने वाले मर्द हैं, या दूसरा मोनस का माना लें तो बहुत फूंकने वाली औरतें, तो दोनों ही शामिल है। और अमूमन गिरा या फिर अगर बाल नहीं है तो किसी धागे या किसी और ऐसी चीज के ऊपर गिरे लगा लगा के फूंका जाता है। तो जादूगरों से और जादूगरनियों के शर से मैं अल्लाह ताला की पनाह लेता हूं, तो ये भी सिर्फ अल्लाह ताला बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता। और इसके लिए इन सूरतों से मुअस्सर कोई चीज नहीं हो सकती। और ये सोचें अगर हम कि जादू कोई करता क्यों है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने होने क्यों दिया, तो ये भी समझ जाएं कि इसमें भी हिकमत है, कि हम सबको समझ आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, खुदा नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की हिफाजत की जरूरत है, जैसे इंसानों को बाकियों को जरूरत होती, इसी तरह उम्मत को भी सबक देना मकसूद है कि ऐसे शर पसंद लोगों से, सिर्फ उससे नहीं नफा साथ से, जो भी जादूगर जादूगरनियां उनसे दूर रहना चाहिए। देखें जिन चीजों से आप अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते हैं, जाहिर है आप उनके करीब तो नहीं रहेंगे, उनके पास तो नहीं जाएंगे, तो आप ऐसी चीजों से ही, ऐसे लोगों से भी दूर रहना। तो जादू शर है, और इस शर को मिटाने के लिए सुबह शाम के अज़कार और ये सूरतें बहुत मौसर हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी में जितनी खैर होगी ना, उतनी ही आपके अंदर ताकत होगी कि आप शर से लड़ें, शर आपके ऊपर गालिब ना आए। और अल्लाह के कलाम से बड़ी चीज क्या हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया ना, वमा हम बिदौरीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, इनके पास कोई अपनी ताकत नहीं है, इन जादूगरों के पास, सिवाय अगर अल्लाह का इज़न ही हो तो फिर ये कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अब जो सवाल है कि जादू कोई क्यों करता है, अक्सर जादू जो होता है वो हसद की वजह से किया जाता है कि फलां नाकाम हो जाए, किसी तरह ये कामयाब ना हो जाए, इसको कोई तरक्की ना मिल जाए, ये क्यों आगे निकल गया है, इसके पास ये सब कुछ क्यों आ गया है, इसकी फलां की शादी वहां क्यों हो गई है, फलां इतनी खूबसूरत क्यों लग रही। तो जो जलन कोड़न होती है उसकी वजह से अक्सर लोग जादू के कराने के पर तुल जाते हैं, क्योंकि उनको किसी पल चैन नहीं आ रहा होता। इसीलिए अगली बात क्या है, वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये हासिद के हसद से ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर साहिबे नेमत हसद किया जाता है, जिसके पास भी नेमत होती है ना लोग उससे हसद करने लगते हैं। एक हसद तो वो है जिसको रश्क कहते हैं, वो तो जायज है कि जैसे आपने किसी की कोई चीज देखी तो आपने मसलन, जैसे हदीस में आता है किसी के पास बहुत माल है और वो दिन और रात अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगा रहा है, तो आप अगर ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह अगर मेरे पास भी इतना माल हो, लेकिन जेन्युइन हो ये ख्वाहिश मेरे पास भी काश इतना माल हो तो मैं भी ये अल्लाह के रास्ते में इसी तरह दूं जैसे ये देता है, तो वो तो ठीक है, वो रश्क है। आप किसी को कुरान अच्छा पढ़ता हुआ सुनते हैं तो कहते हैं काश मेरी भी आवाज ऐसी हो, इतनी हद तक तो सही है। लेकिन जब ऐसा होने लगे कि आप किसी की अच्छी चीज देख रहे हैं और उसके बाद आपके अंदर एक जलन का एहसास होता है और आपको दिल करता है कि इससे ये चीज तो छिन जाए, इसको क्यों मिल गई, इसके पास क्यों है ये भलाई, वो बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये खैर या ये कोई नेमत या कोई ये भलाई ये इसके पास क्यों है, हाय क्यों इसको मिल गई, ये अंदर कुछ होने लगता है, वो है चीज जो हसद कहलाती है। ये नहीं कि मुझे मिल जाए, जरूरी नहीं है ये, मुझे मिले ना मिले लेकिन इसको क्यों मिल गई, चाहे खुद अच्छे हाल में भी बैठे में या खुद उससे कम हालत में, इट डजेंट मैटर, असल बात ये कुड़न कि इसके पास क्यों है, इसको क्यों ये चीज मिली, इससे बस छिन जानी चाहिए। और जब पता चलता है कि उसका कोई नुकसान हो गया या उसके साथ ये हादसा हो गया या उससे वो चीज छिन गई है तो अंदर ठंडक सी पड़ जाती है, समझ ले हसद अपने अंदर है। और ये ना समझे कि हसद करने से दूसरे को नुकसान होगा, मुझे क्या नुकसान होगा अगर मैं हसद कर रही हूं, तो हाँ बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद जो है वो ऐसे नेकियों को बर्बाद कर देता है जैसे कि आग लकड़ी को जला के रख देती है, इस तरह से नेकियों को हसद खा लेता है। तो नेकियां तो इंसान की गई, दूसरे इंसान गुनाह कमा लेता है। देखें जिन गुनाहों का दिल में होना उसकी वजह से इंसान की पकड़ हो सकती है, उनमें हसद भी है, तकब्बुर भी है, बोझ और कीने भी हैं, तो हसद भी वो चीज है, होता तो दिल से स्टार्ट होता है, इसका खमियाजा इंसान को कयामत में भुगतना पड़ सकता है कि अगर उसके दिल में हसद था जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा, क्योंकि हसद से ही आगे नजरे बद है, नजरे बद इसी का आगे लिंक है, समझ ले हसद होता है तो नजरे बद भी आती है साथ, क्या इसके पास क्यों ऐसे हो, और फिर उसको नजर लग जाती है, और नजरे बद भी यानी जिसको हम कहते हैं नजर लगना वो भी बरहक है, वो भी यानी ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसी बातें हैं इससे कुछ नहीं होता नजर लग, नहीं ये भी बरहक है। तो अल्लाह ताला के फैसले पर अगर इंसान राजी हो तो उसके अंदर कभी हसद नहीं आएगा, हसद इस चीज का साइन है कि आप अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं है, क्योंकि उसको किसने दिया, अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ने अपनी मशीयत से दिया, अल्लाह ने अपनी हिकमत से दिया, अल्लाह ताला का फैसला उसको देना, जब आप सोचते हैं कि ये क्यों इसको मिला तो फिर समझ लें आप एतराज कर रहे हैं या आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं अल्लाह के फैसले पर कि नहीं मिलना चाहिए था इसको। फिर चौथी चीज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी है अगर इंसान हसद करता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तो हासिदु, ना तुम हसद करो, और हम हसद करते हैं तो हमने नाफरमानी की उनकी। पांचवी बात ये कि हासिद का दिल कभी भी चैन से नहीं होता, उसके दिल में हर वक्त जलन कुड़न बेचैनी रहती है, ये ऐसी आग है कि अंदर ही अंदर इंसान जलता रहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे भी आ जाती है, जो हासिद होते हैं उनके चेहरे भी वैसे ही हो जाते हैं, अरे गुनाह इंसान ने अंदर छुपाया हुआ है उसका असर तो आएगा। तो क्या करें अगर मेरे अंदर ये चीज आ गई है तो मैं क्या करूं, सबसे पहली चीज ये कि जब किसी की नेमत को देखें तो उसको बरकत की दुआ दें, बारक अल्लाह फी, अल्लाह आपको बरकत दे इसमें, देखिए एक तबारक अल्लाह भी है, तबारक अल्लाह इसके लिए नहीं है यहाँ पे कहने के लिए, तबारक अल्लाह ताला की जात बाबरकत है, लेकिन आप उसको उस नेमत के ऊपर कहें बारक अल्लाह फी, इसमें अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो बंदा खुद अपने लिए अपनी नेमत के लिए कर, लेकिन दूसरा देख के कहे तो बरकत की दुआ दे। और कभी कभी नजरे बद इंसान की अपनी भी लग जाती है, यानी अपने बच्चे को अपनी नजर भी लग जाती है, तो फिर भी ये सूरतें पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा इसका इलाज क्या है? जब ऐसी बात दिल में आए, ख्याल आए, फौरन औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ें। और ये चीजें इंसान, ये हसद और ये चीजें इंसान के अंदर होती हैं, किसी ना किसी से उसको कभी ना कभी हसद हो जाता है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से फिर इंसान लेग पुलिंग करता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं ना हो रहा, ये आगे क्यों बढ़ गया। फिर इसी की वजह से इंसान गीबतें करता है, फिर इंसान दूसरे को किसी तरह उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको खिलाफ नेगेटिव प्रोपगेंडा शुरू कर देता है, उसके ऊपर ऐब लगाने लगता है, तरह तरह से उसको ताने दे के और तंज करके उसके ऊपर उसको अजियत देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना क्यों ये खुश है। बाज लोगों से दूसरों की खुशियां भी देखी नहीं जाती, कोई चीज मिलने की बात नहीं है, बस ये खुश क्यों है। अब उसकी खुशी से ही आग लगी रहती, और ये आज के दौर में बहुत कॉमन है। इसी वजह से आपको अपनी नेमतों को, अपनी कामयाबियों को, अपने पास जो कुछ है, जो अल्लाह ताला ने आपको कोई खास चीज दी हुई है, कोई फजीलत है, उसको कोशिश यही करें कि छुपा के रखें, उसके इश्तिहार ना लगाएं कि हर ग्रुप में मैं भेज रहे हैं, देखो मेरे बच्चे ने फलां चीज की ऐसे तिलावत कर दी, देखो मैंने ये नई गाड़ी खरीद ली, देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम वहां वेकेशन पे गए हैं। आपको नहीं पता कि किसी के दिल में कैसा हसद आ जाए, देखो ये फलां ने कितनी ग्रैंड शादी की, अपनी शादी को इतना दिखा रहे हैं, फिर उसको पोस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अगले दिन को कोई ये तकलीफें हो गई, ये मर्ज हो गया, बीमारियां लग गई, जॉब चली गई, फलां हो गया। तो आपने भी तो इतना शो ऑफ किया, जो लोग आए उन्होंने तो देखा, जो लोग घरों में बैठे थे उनके लिए सोशल मीडिया पे आपने लगा दी। तो इतना इश्तिहार लगाना, कोई कोई लोग अपने पैसे का लगाते हैं कि अपने पैसे की इतना इश्तिहार देते हैं, इतना दिखावा करते हैं, और उसके बाद सब कुछ गिर जाता है, खत्म हो जाता है। हो सकता है किसी हासिद का हसद हो सकता है कोई नजरे बद हो, जैसे मैंने आपको बताया हासिद के हसद से ही आगे नजरे बद भी होती है, और फिर उसको तभी करार आता है जब ये बंदा तकलीफ में चला जाए, जब ये बर्बाद हो। तो इसलिए अगर हाँ अपने आपके अंदर आ गया, तो फिर तीसरी चीज क्या है, माउज़ातैन पढ़ें, यही दोनों सूरतें पढ़ें। और चौथी चीज क्या, तन्हाई में भी उस बंदे के लिए दुआएं करें ताकि दिल से ये बातें निकलें। और पांचवी चीज क्या है कि उसके लिए लोगों में अच्छी बात करें, उसकी तारीफ करें लोगों में बैठ के, ये भी एक थेरेपी है अपनी, के इंसान के अंदर से हसद खत्म हो, क्योंकि कोई और आके आपके अंदर से हसद खुरेज के निकाल नहीं सकता जब तक आप खुद कोशिश ना करें। आपको पता चल गया ना मेरे अंदर ये बात होती है और मुझे ऐसा महसूस होता है, पहले तो डायग्नोज करें ना, क्या महसूस होता है जब आपको नेमत का किसी की पता चलता है, किसी मतलब बहुत आला खानदान में शादी हो गई, या कोई पास हो गया बहुत अच्छे नंबरों से, या किसी को कोई और बड़ी पोजीशन मिल गई है, कोई बड़ा ओहदा मिल गया है, कोई मतलब दीन के काम में ही कोई आगे बढ़ गया है, तो अब महसूस क्या होता है, खुशी होती है कि गम लग जाता है, हाय हाय निकलने लगती है, क्यों क्यों ये दिल के अंदर बार बार सवाल आता है, इसको क्यों। तो समझने के हसद इसी को तो कहते हैं, वरना इंसान अगर किसी की अच्छी नेमत है आप उसको देखते हैं और आपको मसलन नेकी का ही काम है, आप कहते हैं अल्लाह मुझे भी तौफीक देना, मैं भी ऐसे करूं, मेरे मेरे पास भी इतनी अच्छी आवाज हो कि मैं भी ऐसी कुरान पाक की तिलावत किया करूं, या मुझे भी अल्लाह तौफीक दे मेरे से भी नेकी के काम ले, फिर वो हसद नहीं है। आपको अच्छा लगा देख के, आपको खुश हुए देख के, आपको किसी की कामयाबी मिली है तो अच्छा लगा। बाज लोग लोगों के बच्चों से हसद करने लगते हैं, उसके बच्चे आगे क्यों निकल गए, मेरे क्यों नहीं निकले, उनके निकलने से आगे आपके बच्चे पीछे थोड़ी रहे, उनकी अपनी किस्मत, आपके बच्चों की अपनी किस्मत, ये अल्लाह ताला ने किस्मतों के फैसले किए हैं ना, तो आपको अल्लाह के फैसले पे एतराज है। किसी को प्रमोशन मिल जाती है, उसके ऊपर लोग पूरा ऑफिस हसद करने लगते हैं, इसको ही प्रमोशन क्यों मिल गई, उसके ऐब नजर आने लगते, ये तो ऐसे ऐसे इतने निकम्मे हैं, बस ऐसे हैं। और देखो हमें आजमा के देखते, फिर पता चलता कि हम क्या करते हैं। समझ में, हसद है और कुछ नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है कोई अच्छे काम करने का, या अच्छे आगे निकलने का, या कोई बड़ी जगह पे तरक्की का, आप अपनी मेहनत करें, दूसरे को देख के मत हसद करें, क्योंकि हसद बर्बाद कर देता है इंसान को, और इंसान अपना फिर कीमती वक्त इन्हीं चीजों में गुजार देता है। क्योंकि अब जाहिर है, जब उसको देखा कि वो ऐसे आगे निकल रहा है, तो अब जिधर बैठे अब आपको उसकी बुराइयां ही नजर आ रही। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, और यही वो पहला जुर्म है जो आसमानों पे हुआ, और पहला ही गुनाह जो जमीन पे हुआ। पहला गुनाह जो आसमानों पे हुआ किसके दरमियान? इबलीस ने हसद किया आदम अलैहिस्सलाम से। और जमीन पे पहला गुनाह कि काबिल ने हसद किया हाबील से। कत्ल तो बाद की बात है ना, पहले हसद हुआ था फिर कत्ल हुआ था। तो कि ये कैसी चीज है जिसने उसको शैतान बना दिया और काबिल को वो कातिल बना दिया, कि सब कातिलों के कत्ल जो भी वो कत्ल करेंगे उसका एक गुनाह काबिल को भी जा रहा है। ये इतना खतरनाक है, इंसान की आखरत को बर्बाद कर देने वाली चीज है। तो जहां पे हम कोई हमसे हसद करे, जहां पे हम अल्लाह ताला की पनाह पकड़ रहे हैं उसके हसद से, कि इसकी जलन जो है ना, वो उसकी जो जलन और कुड़न है ना, वो भी इंसान के ऊपर असर कर देती है। यानी ये उसका एक शर होता है। ये कैसे वर्क करता है? बाज कहते हैं कि इंसान के अंदर जब हसद के जज्बात आते हैं, तो जो उसका करीन होता है वो जाके फिर उस दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वो इतना पावरफुल हो जाता है जो शैतान होता है उसका, फिर वो दूसरे को जिसके साथ वो हसद कर रहा है उसके ऊपर जाके पड़ता है और उसको नुकसान देता है। तो किसी तरह भी है, लेकिन हमें पता चलता है कि हासिद के हसद का भी शर होता है, और हम नहीं जानते कौन कौन हासिद है। अब एक जगह को बैठा हुआ है कोई हमसे बातचीत कर रहा है, हमें क्या पता कि इसके दिल में क्या है, क्योंकि हसद छुपा हुआ होता है ना, वो तो निकलता है इस तरह से। अब हम नहीं जान सकते कि ये हसद की वजह से है, क्या है, ये मुझे बात क्यों कह रहा है, या कौन हसद पाल के उठ के चला गया और उसके बाद पीठ पीछे वो क्या कार्रवाइयां कर रहा है। तो इसलिए हम ऐसी चीज जिसको हम देख ही नहीं सकते, हम इसका मुकाबला क्या करेंगे, तो हम अल्लाह ताला की पनाह लेते हैं कि अल्लाह मुझे अपनी अमान दे दे, क्योंकि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ए अल्लाह तू ही इससे मुझे बचा सकता है। और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमें भरोसा रखना चाहिए। चाहे हासिद हमें कितने भी हसद के बाद कार्रवाइयां करके हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे, अल्लाह ताला पे हम भरोसा करते हैं। इसी वजह से देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी चल गया था कि इस यहूदी ने मेरे ऊपर ये जादू किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई बुरा भला नहीं कहा, कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा अगर आपको कुछ पता भी चल जाए, अव्वल तो पता चलना बहुत ही मुश्किल है, पता भी चल जाए तो तब भी इसी उसके अंदर ना रहे, इसी एक फिक्र के अंदर कि देखो फलां है उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आप खुद एक सार जगह बैठ के गीबत कर रहे हैं, उसने मेरे साथ हसद किया। फिर उसके बाद इंसान क्या करता है, उसके साथ तो बिल्कुल मेरे ताल्लुकात खत्म, आज के बाद उनके साथ ना बात करनी, ना कोई ताल्लुक ना रखना। खासतौर पर रिश्तेदारों में काफी हसद हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद किया था ना कि बाप इसको ही क्यों पसंद करता है, इसको तो रास्ते से हटाओ, वो भी हसद ही था ना। अगर पैगंबर के बच्चों के अंदर हसद आ सकता है तो किसी में भी आ सकता है, बहन भाइयों में हसद हो जाता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि फिर आप कता ताल्लुक करके बैठ जाए कि इसके अंदर तो हसद है, बल्कि कोशिश करें कि हासिद के हसद को इस तरह से भी मिटाने की कोशिश करें कि उसको तोहफे तहाइफ दें, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, ताकि उसके दिल की जलन कुड़न
कुछ तो खत्म हो और दूसरा अपनी नेमतों को, अपनी कामयाबियों को, अपने पास जो भी अल्लाह ताला की दीवे फजल है उसको छुपा के रखें, उसको बहुत ज्यादा ना बताएं। इस ये भी एक बचने का तरीका है। तो जहां ये सूरतें आप पढ़ेंगे वहां पे इस तरह से भी आप अपने लिए इंतजाम कर सकते हैं बचने का। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि इंसान जब अल्लाह की पनाह ले लेता है तो फिर बस अमान में आ गया। इस चीज से अपने दिल को तसल्ली दे, ठीक है, और हर वक्त फिर बस इस परेशानी में ना रहे, हाय हमारे साथ तो हसद हो गया, नजर लग गई, बस क्या करें, अब इसी गम के अंदर अब आप पड़ गए और हर काम छोड़ दिया क्योंकि अब हमें तो फलां हासिद है हमारे, और नहीं बस फिर जब आपने पढ़ लिया तो यकीन के साथ पढ़े ना, कितनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, इसके बाद तो कुछ ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए कि इंसान उसके ऊपर परेशान रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीजों से खास तौर पे फरमा दिया कि अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए इंसान। आगे सूरत नास है जो कि इसी के सी सूरत के साथ ही आपने पढ़नी है और इसके जरिए भी अल्लाह ताला की पनाह में आना है। इसके जरिए भी आपने उन चीजों से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह लेनी है, अल्लाह ताला की हिफाजत में आना है, जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती। और ये भी इसके अंदर फर्क है थोड़ा सा, सूरतुल फलक में मुफस्सिरीन कहते हैं उन चीजों का जिक्र खास तौर पे है जो हमारी दुनिया को बर्बाद कर देने वाली हैं, लेकिन सूरतुल नास में उन चीजों का जिक्र है जो हमारी आखरत को बर्बाद कर देने वाली हैं, यानी आखरत का हमारा नुकसान कर देने वाली है। इसलिए हम उन चीजों से बच के और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं। ये पनाह लेना ऐसे ही है जैसे मसलन है कि कोई किसी के पीछे दुश्मन था और उसने जाके एक मजबूत किले में पनाह ले ली जहां पे दुश्मन दाखिल नहीं हो सकता, और वो अपने आप को समझता है कि अब मैं सेफ हूं। अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती ऐसी, लेकिन आप खुद सोचें कि फिर जो अल्लाह ताला की जो पनाह होगी वो कितनी मजबूत होगी। इंसान एक कोविड का वैक्सीन ही लगा लेता है तो उसके बाद ही इंसान बड़ा मुतमईन हो जाता है, मैंने तो वैक्सीन लगाया है, मुझे तो नहीं बीमारी छुएगी। तो जो ये माओजतैन पढ़ लेना, उसने इतने बड़े की पनाह ले ली कि अब उसको कोई परेशानी होनी ही चाहिए। तो उसमें हमारी अगली सूरह के अंदर हमारी वो मुश्किलात हैं, वो चीज़ है, हालांकि एक ही बात बताई गई लेकिन ऐसी चीज़ है जो आखरत को तबाह कर देने वाली है कि अगर उस चीज़ ने हमें टेक ओवर कर लिया तो हमारी आखरत खराब हो जाएगी। लिहाजा हम बहुत तेजी से अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए उसकी तरफ बढ़ें। और इसमें आपने देख लिया कि खासुल खास तीन चीज़ों से पनाह अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मांगी गई, और वो है अंधेरा, और वो है जादूगरनिया या जादूगर, और वो है हासिद। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह ताला हमें इन सूरतों को सही समझने की और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनते हैं तिलावत इस सूरा की।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد